अबीर को देखकर प्रियंका की नीयत पूरी तरह से फिसल रही थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि अबीर सिंह राठौड़ कितना अमीर आदमी है और कितना हैंडसम है। अगर अरमान के बाद कोई सबसे ज्यादा हैंडसम और अमीर है तो सिर्फ और सिर्फ अबीर सिंह राठौड़ है। तब अबीर साफ शब्दों में बोला, देखो मुझे घुमा फिराकर बात करने की आदत नहीं है, तुम्हें मेरा काम करना होगा, उसके लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। तब प्रियंका की आंखों में चमक आ गई थी, सीमा तो हवा में उड़ने लगी थी और बिना अबीर की पूरी बात सुने तुरंत बोल पड़ी, हाँ हाँ साहब जी, ये आपका सारा काम करेंगी, बोलिए क्या काम है आपको। अब प्रियंका घूरकर अपनी माँ को देखने लगी, क्योंकि उसकी माँ के चेहरे पर लालच साफ साफ दिखाई दे रहा था। अबीर बिना भाव के बोला, आपकी बेटी को कुछ दिनों तक मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना पड़ेगा। जैसे ही अबीर ने यह कहा, प्रियंका हैरान हो गई। वहीं सीमा तो हैरानी से अपनी आंखें मसलने लगी थी और अपने कान मसल मसल कर चेक कर रही थी कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। तब अबीर एरोगेंट वॉइस में बोला, देखो मैं चाहता हूं कि प्रियंका मेरी गर्लफ्रेंड बनकर आस्था के गांव में चले। अब आस्था का नाम आने पर सीमा हैरान हो गई। वहीं प्रियंका के दिमाग में इस वक्त खिचड़ी पक रही थी और वो बिना देरी किए बोली, ठीक है मुझे मंजूर है, अब बताइए कब और चलना है और मैं चलने के लिए तैयार हूं। तब अबीर बोला, तुम्हें अपने गांव का रास्ता तो पता है ना। तब सीमा जल्दी से बोली, उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं इसके फोन में लोकेशन सेट कर दूंगी, डोंट वरी। क्योंकि सीमा एक दो बार मनोज जी के जोर देने पर गांव में गई थी तो उसे अच्छी तरह से गांव का रास्ता पता था। तब अबीर ने कोल्ड एक्सप्रेशन से उनकी ओर देखकर कहा, ठीक है एक घंटे बाद मेरा आदमी तुम्हें यहां से पिक कर लेगा, तब तक तुम रेडी हो जाओ। ऐसे बोलकर अबीर वहां से चला गया था। अब सीमा प्रियंका की ओर देखकर बोली, ये आस्था को क्या मसला है और ये इतना अमीर आदमी आस्था को कैसे जानता है? हाँ मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तब प्रियंका मुस्कुराते हुए अपनी माँ की ओर देखकर सरकास्टिक टोन में बोली, अरे माँ तुम नहीं समझोगी, ये कोई आम मसला नहीं है। आप जानती हैं ये आस्था का एक तरफा आशिक है और ये आस्था को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अभी फिलहाल ये मेरा इस्तेमाल करना चाहता है आस्था को पाने के लिए, लेकिन आपकी ये बेटी भी कुछ कम नहीं है। अब मैं इसका इस्तेमाल करूंगी अरमान सिंघानिया को बर्बाद करने के लिए और साथ ही साथ आस्था की जिंदगी को नर्क बनाने के लिए। अब जैसे प्रियंका ने यह कहा, सीमा को कुछ खास समझ में तो नहीं आया था, लेकिन साथ ही साथ इस बात से वो गुस्से से भर उठी थी कि इतना अमीर आदमी भी आस्था को पसंद करता है। और तब सीमा कुछ पल खामोश होकर बोली, तू एक काम कर, तू फटाफट से तैयार हो जा, अभी मैं तेरे पापा से पूछ लेती हूँ कि वो कहाँ है और जब वो आएंगे मैं बहाना बना दूंगी कि तू कुछ दिनों के लिए अपने दोस्तों के साथ आउटडोर ट्रिप पर गई है, ठीक है? तब प्रियंका मुस्कुराकर हाँ कहा और फटाफट से तैयार होने के लिए चली गई थी। वहीं दूसरी ओर गाड़ी में सफर करते हुए दो घंटे से ज्यादा हो गए थे। अब तो आस्था को बेहद नींद आने लगी थी क्योंकि अरमान पूरे रास्ते अपना काम करते जा रहा था, क्योंकि वो पूरा 15 दिन के लिए बाहर जा रहा था तो वो इस तरह से सेटिंग कर देना चाहता था कि इससे उसके काम पर किसी तरह का कोई इफेक्ट ना पड़े। अब आस्था ने जल्दी ही अपना सर अरमान के कंधे पर रख दिया था। तब अरमान ने मुस्कुराकर अपना लैपटॉप साइड में रखा और आस्था को अच्छे से अपनी बाहों में भर लिया और बड़े ही प्यार से उसकी पीठ को, उसके पेट को, साथ ही साथ उसके सर को सहलाने लगा था। वहीं दूसरी ओर रौनक इस वक्त आहान के साथ पिछली सीट पर थी, उनके साथ ध्रुव आगे वाली सीट पर बैठा हुआ था। वहीं रौनक कंफ्यूज थी कि आखिरकार इस छछुंदर को उसके साथ क्यों बिठा दिया गया है और उसे समझने में देर नहीं लगी कि शायद सारे परिवार वाले क्या चाहते हैं। लेकिन तब आहान रौनक को इस तरह से बिल्कुल चुपचाप देखकर चिड़चिड़ा गया था और मन ही मन में सोच रहा था, इससे अच्छा होता कि मिस हवा हवाई किसी और के साथ ही आ जाती, कम से कम मेरा सफर इतना ज्यादा बोरिंग तो नहीं होता। तब आहान ध्रुव की ओर देखकर बोला, यार ध्रुव आई एम फीलिंग वेरी बोर, कुछ तो कर यार, तुझे क्या अच्छा लग रहा है, रूखी सूखी सी ट्रिप? मैंने तो सोचा था कि गांव की ट्रिप करेंगे, बहुत मजा आएगा, लेकिन कुछ बोरिंग लोगों के रहते तो मेरी पूरी ट्रिप बोरिंग हो जाएगी। जैसे ही आहान ने इनडायरेक्टली रौनक पर निशाना साधा, रौनक ने केवल एक आईब्रो चढ़ाते हुए उसकी ओर देखा और उसके बाद उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। तब ध्रुव हंसते हुए बोला, यार तू क्या चाहता है, मैं क्या पूरे रास्ते तेरे लिए भांगड़ा करते हुए चलूं? हाँ चुपचाप शांति से सफर कर यार, और अभी पूरे 1.5 घंटे का सफर और बाकी है। याद नहीं आस्था भाभी ने क्या कहा था कि 4 से 5 घंटे उनके गांव में पहुंचने में लगते हैं और अभी हमने केवल 2-2.5 घंटे का सफर किया है और मुझे लगता है कि अभी 2-3 घंटे और लगने वाले हैं, तो अब चुपचाप करके बैठ। तब आहान बोलता है, यार मेरे बस की नहीं है, मैं इतनी देर तक चुपचाप बैठ गया हूँ, अब मुझसे नहीं होगा, तो कहीं अच्छी सी जगह देखकर गाड़ी रोक, मैं पहले कुछ खाऊंगा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आहान की बात सुनकर ध्रुव ने अपने सर पर हाथ मार लिया था और फटाफट से उसने ग्रुप मैसेज छोड़ा कि आहान को भूख लगी है, क्या कहीं गाड़ी रोक दी जाए। तब अरमान को जैसे ही नोटिफिकेशन शो हुआ उसने तुरंत हाँ बोल दिया था, क्योंकि आस्था भी काफी देर से सफर कर रही थी और हो सकता है कि आस्था को भी भूख लगी हो, तो इसीलिए अरमान ने किसी अच्छे से रेस्टोरेंट के पास गाड़ी रोकने के लिए कह दिया था। वहीं आहान भी अब खुश हो गया था। आकाश ने भी एक नजर रश्मि की ओर देखता है जो कि आकाश के कंधे पर सर रखकर सुकून से सोई हुई थी। तब उसे रश्मि का ख्याल आया कि उसे भी अब कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर राधिका आराम से नानी माँ की गोद में लेटी हुई थी। नानी माँ उसे बड़े ही प्यार से होल्ड करके बैठी हुई थी। सुमित आगे बैठा हुआ था। सुमित बार बार साइड मिरर से घूर घूर कर राधिका को देख रहा था कि कितनी आराम से और नानी माँ की गोद में आराम कर रही है। वहीं राधिका को अपने बदन पर सुमित की गहरी नजर महसूस हो रही थी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो सुमित को बिल्कुल भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहती थी। वेल, तभी ध्रुव रौनक से ड्राइव करते हुए पूछता है, अच्छा ही मिस रौनक, क्या तुम्हें भी भूख लगी है? अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं कहीं ना कहीं गाड़ी रुकवा दूंगा। अब जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, आहान घूरकर ध्रुव को देखते हुए बोला, अरे वाह रे वाह, तू कैसा दोस्त है यार, लड़की के लिए तो कहीं भी गाड़ी रुकवा देगा। तेरा दोस्त बेचारा कब से भूखा है, भूख से तड़प रहा है, भूख से उबल रहा है, और तुझे कितनी बार बोल भी चुका है कि तू कहीं गाड़ी रुकवा दे, तो तू ग्रुप मैसेज करके सबसे पूछ रहा है, और यहां पर लड़की अगर कह देगी तो तू अभी गाड़ी रोक देगा। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा दोस्त भी मुझे पराया हो जाएगा, ऐसा बोलकर आहान घूरकर ध्रुव को देखने लगा था। तब उसकी नौटंकी देखकर ध्रुव हंसते हुए बोला, यार क्या बकवास कर रहा है तू, हाँ तुमने देखा नहीं, रौनक ने सुबह नाश्ता भी ठीक से नहीं किया था, और रही बात तेरी, तुझे तो मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा था कि तू किस तरह से ठुस ठुस कर पनीर के परांठे आलू के परांठे खा रहा था। अरे कम से कम 8-10 खा गया होगा, तो तुझे भूख कहाँ से लग रही होगी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ एक जगह तुझे बैठने की आदत नहीं है, इसलिए बस तू थोड़ी देर के लिए गाड़ी से बाहर निकलना चाहता है, ठीक है? और मैं सिर्फ रौनक से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर उसे भूख लगी होगी तो मैं वाकई उसके लिए गाड़ी रोक दूँ।
तब रौनक ध्रुव की ओर देखकर बोली, नहीं ध्रुव जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई भूख नहीं लगी है। तब ध्रुव ने ओके कहा। तब वहीं आहान रौनक को देखकर बोला, हाँ हाँ इन मैडम को भूख कैसे लगेगी, इतना मेरा खून जो पीती है। तब रौनक घूरकर आहान को देखकर बोली, व्हाट यू, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? हाँ मैं तुम्हारा खून पीती हूँ, हाँ क्या मैं डायन लगती हूँ मैं तुम्हारा खून पीऊंगी? हाँ देखो, तुम्हें मुझसे ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही अब रौनक ने एक ही झटके में आहान को लताड़ा, आहान और उसे और भड़काते हुए बोला, ओ अच्छा, तुम्हें भूख इसीलिए नहीं लग रही है, तुम मेरा खून पीती रहती हो और मेरा दिमाग खाती रहती हो, तो इसलिए तुम्हें भूख कहाँ से लगेगी? हाँ बताओ मुझे, भला कहाँ से लगेगी तुम्हें भूख? ऐसे बोलकर आहान रौनक को देखने लगा था। वहीं ध्रुव आहान और रौनक की नोकझोंक एंजॉय करने लगता है। तब रौनक आहान को देखकर बोली, अच्छा मैं तुम्हारा दिमाग खाती हूँ? अरे दिमाग उसका खाया जाता है जिसके पास कोई कुछ थोड़ा बहुत दिमाग हो, तुम्हारे पास तो दिमाग नाम की कोई चीज है नहीं। और हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा खाली दिमाग खाऊंगी? नो वे नो वे। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, आई एम प्योर वेजिटेरियन और मुझे तुम्हारा दिमाग खाने का कोई शौक नहीं है। जैसे रौनक ने ये बताया, आहान बोला, अच्छा तो आप वेजिटेरियन हैं? अच्छा, एक तो आपने मेरा दिमाग खा खा के मुझे एकदम पागल बना दिया है, और आप वेजिटेरियन होने का दावा कर रही हो, जस्ट रिडिक्युलस। पता नहीं आजकल की लड़कियां खाना वाना तो खाती नहीं है, बस अपने बॉयफ्रेंड का या अपने पतियों का दिमाग खाता रहती है। अब जैसे ही आहान ने बातों बातों में रौनक को अपनी गर्लफ्रेंड कहा, रौनक गुस्से से तमतमाते हुए देखकर बोली, जस्ट शट अप, कौन बॉयफ्रेंड कौन पति, देखो मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ और मैं तुम्हें अब भी समझा रही हूँ, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसे छचुंदर को अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी? इन योर ड्रीम्स, इसके सपने देखना तुम छोड़ दो, समझे तुम? मैं तुमसे किसी भी कीमत पर शादी नहीं करूंगी, और बॉयफ्रेंड वो भी तुम्हें, नो वे। अरे अगर मुझे कोई बॉयफ्रेंड बनाना ही होगा तो मैं ध्रुव जी को बना लूंगी, पर तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे ही रौनक ने बातों ही बातों में ध्रुव का नाम लिया, ध्रुव की आंखें तो हैरानी से फैल गई थीं। वो आहान गुस्से से भर उठा था। ध्रुव आहान को देखने लगता है और आहान आंखों ही आंखों में ध्रुव को देखकर ये बोल रहा था मानो कि वो सब कहना चाह रहा हो, एक बार गाड़ी रुकने दे, तुझे तो मैं तब बताता हूँ। आहान के इशारों का मतलब समझकर ध्रुव जोरों से हंसने लगता है। वहीं दूसरी ओर